ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने की ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक एलपी गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने की है योजना। कामिनीता शेरपा ने 32वीं बार किया सगरमाथा का सफल आरोहण। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने पर्वतारोहण इतिहास में शेरपा समुदाय के योगदान को बताया असाधारण। और कांगो में फैले इबोला प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक की है। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक खाना पकाने में उपयोग होने वाली एलपी गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर विद्युतीय चूल्हों पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की योजना के साथ सरकार ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक की है। ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विद्युतीय चूल्हों पर सब्सिडी देने और स्वच्छ ऊर्जा की खपत बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ये रणनीति सार्वजनिक की गई है। विदेश से प्राप्त विप्रेषण की बड़ी राशि हर वर्ष खाना पकाने वाली गैस पर खर्च होने की प्रवृत्ति को रोककर धन बचाने और उसे देश के भीतर ही बनाए रखने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 तैयार की है। इस कार्य के लिए उद्योग मंत्रालय को जिम्मेवार निकाय निर्धारित किया गया है। अर्थ मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय आवश्यक समन्वय कर आर्थिक वर्ष 2092-93 तक इसे पूरा करने की समय सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने 32वीं बार सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफल आरोहण करने वाले कामिनीता शेरपा और 11वीं बार एवरेस्ट आरोहण करने वाले लाखपा शेरपा को बधाई देते हुए उनके प्रति उच्च सम्मान व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि पर्वतारोहियों की यह सर्वोच्च सफलता नेपाल के पर्वतीय पर्यटन को और अधिक विश्वसनीय, गौरवपूर्ण तथा आकर्षक बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में नेपाल की पहचान को और उज्ज्वल बनाएगी। उन्होंने लिखा है कि हिमालय को ईश्वर की तरह पूजने वाले, जोखिम को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करने वाले और विश्व भर के पर्वतारोहियों को सुरक्षित रूप से शिखर तक पहुंचाने वाले शेरपा वास्तव में हिमालय के अदृश्य नायक हैं। कामिनीता शेरपा ने आज सुबह 10:12 पर 32वीं बार सफल एवरेस्ट का आरोहण कर अपना ही विश्व कीर्तिमान पुनः नवीनीकृत किया। इसी तरह माउंटेन क्वीन के नाम से प्रसिद्ध लाखपा शेरपा ने आज सुबह 9:30 पर 11वीं बार एवरेस्ट आरोहण कर महिला पर्वतारोहियों में सबसे अधिक बार एवरेस्ट चढ़ने का विश्व कीर्तिमान कायम किया। इसी तरह सशस्त्र प्रहरी संगठन की ओर से सशस्त्र प्रहरी सहायक हवलदार अनिता कार्की और सहायक निरीक्षक निम डिक्की शेरपा ने भी आज सुबह सर्वोच्च शिखर सगरमाथा का सफल आरोहण किया। चितवन में जंगली मशरूम खाने से मृत्यु होने वालों की संख्या 2 पहुंच गई है। चितवन की इच्छा कामना गांवपालिका 1 कुलबांग के 2 लोगों की मृत्यु हुई है। मृतकों में 9 वर्षीय नमूना चेपांग और 11 वर्षीय संजय चेपांग शामिल हैं। जिला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनाल के अनुसार नमूना की मृत्यु जेठ 1 गते हुई थी, जबकि संजय की शनिवार रात उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। वैशाख 29 गते श्याम बहादुर चेपांग के 5 सदस्यीय परिवार ने जंगली मशरूम खाए थे। इनमें से 3 लोग जेठ 1 गते बीमार पड़ने के बाद उपचार के लिए भरतपुर अस्पताल लाए गए थे। उपचार के दौरान नमूना की मृत्यु हो गई थी। 13 वर्षीय मनिता चेपांग का इलाज भरतपुर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बीमार मनिता की हालत गंभीर बनी हुई है। महालेखा परीक्षक की 63वीं प्रतिवेदन से पता चला है कि गुठी संस्थान के पास जिलावार भूमि का अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अभिलेख न होने के कारण कुल भूमि क्षेत्रफल का सही निर्धारण नहीं हो सका है, ये जानकारी महालेखा परीक्षक कार्यालय ने दी है। महालेखा ने सुझाव दिया है कि संस्थान के नाम पर मौजूद भूमि तथा संपत्तियों का एकीकृत और कार्यालयीय अभिलेख तैयार कर भूमि संरक्षण एवं उपयोग की व्यवस्था की जाए। प्रतिवेदन में उल्लेख है कि संस्थान की भूमि में धनुषा जिले में 43.5 बीघा, महोत्तरी में 122 बीघा, बारा में 27 बीघा, परसा में 7 बीघा और काठमांडू में 14 रोपनी यानी करीब 21.5 कट्ठा, ललितपुर में 12 रोपनी और भक्तपुर में 2 रोपनी भूमि अतिक्रमण की चपेट में है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु, हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन कुमार थापा ने कहा है कि पार्टी के विशेष महाधिवेशन से बाहर रह गए नेताओं को साथ लेकर काम करना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक विचार समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर आज आयोजित समसामयिक राजनीति में नेपाली कांग्रेस की भूमिका विषयक कार्यक्रम में सभापति थापा ने कहा कि विशेष महाधिवेशन से छूटे नेताओं को केन्द्रीय समिति तथा अन्य समितियों में शामिल किया जाएगा। सभापति थापा ने कहा, पार्टी के 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित नेताओं की एक बड़ी पंक्ति बाहर है। जो नेता 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित होकर भी मेरी समिति में नहीं है, उन्हें मैं वर्तमान केंद्रीय समिति में सम्मान के साथ लाना चाहता हूं। जिन्हें वरिष्ठ नेता बनना चाहिए, उन्हें वरिष्ठ नेता बनाया जाएगा। जिस स्थान पर रखकर संभव होगा, मैं उन्हें साथ लेकर काम करना चाहता हूं। नेकपा एमाले ने पार्टी के तत्कालीन महासचिव मदन कुमार भंडारी और संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रित के 33वें स्मृति दिवस के अवसर पर आज देश के विभिन्न हिस्सों में स्मृति सभाओं सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मदन नगर बलखू में स्मृति कार्यक्रम में दिवंगत नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि नेता भंडारी और आश्रित का विक्रम संवत 2050 साल के जेठ तीन गते चितवन के दासढुंगा में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। विगत लंबे समय से भूमिहीन सुकुमवासी के रूप में रह रहे धनुषा की मिथिला नगरपालिका के 483 परिवारों को आज एक समारोह के बीच लालपुर्जा यानी भूमि स्वामित्व का पेपर वितरित किया गया। मिथिला नगरपालिका वार्ड नंबर 6, 7, 8 और 9 के भूमिहीन सुकुमवासियों को लालपुर्जा प्रदान किया गया है। गांव ब्लॉक की जमीन बिना लालपुर्जा के उपयोग कर रहे सुकुमवासियों को लालपुर्जा वितरित किया गया है। ये जानकारी जिले स्थित नापी कार्यालय नंबर 2 टोली ठलकेवर ने दी। उनके अनुसार टोली के कार्यालय में 658 लोगों ने लाल पुर्जा के लिए आवेदन दिया था। इससे पहले भी इस टोली ने पालिका के वार्ड नंबर 1, 6 और 7 के 64 भूमिहीन सुकुमवासी परिवारों को सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लाल पुर्जा वितरित किया था। बेनीघाट आरूघाट लारके सड़क खंड अंतर्गत गोरखा के नौली नहर पर पक्के पुल का निर्माण किया गया है। 4,36,00,000 रूपये की लागत से 36 मीटर लंबा पुल बनने के साथ ही इस क्षेत्र में चलने वाले वाहनों और नागरिकों के आवागमन में सुविधा हुई है। ये जानकारी पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखा के प्रमुख संतोष अर्याल ने दी। धारचे गांवपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुंग के अनुसार, पहले नहर पर पुल न होने के कारण धारचे गांवपालिका केंद्र और चुमनुब्री गांवपालिका जाने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पूर्वी इतुरी प्रांत में इबोला फैलने से कई मौतें हो गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। WHO ने कहा कि इससे लगभग 246 संदिग्ध मामले और 80 मौतें दर्ज हुई हैं, लेकिन यह वैश्विक महामारी आपातकाल की कैटेगरी में नहीं आती। WHO के डायरेक्टर जनरल ने चेतावनी दी कि अभी संक्रमित लोगों की सही संख्या और इस बीमारी के फैलने को लेकर काफी अनिश्चितता है। WHO ने बताया कि इस बार का इबोला बुंडी बुग्यो वायरस से हुआ है, जिसके लिए दवा या टीका नहीं है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि वायरस कांगो से बाहर भी फैल चुका है और पड़ोसी युगांडा में 2 मामले मिले हैं। युगांडा अधिकारियों ने कहा है कि 59 साल के एक व्यक्ति की गुरुवार को मौत हुई और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस वायरस को कांगो के पड़ोसी देशों को ज्यादा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि यहां लोगों की आवाजाही, व्यापार और यात्रा ज्यादा होती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने की ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति 2083 सार्वजनिक। आर्थिक वर्ष 2092-93 तक एलपी गैस पर दी जा जाने वाली सब्सिडी समाप्त करने की है योजना। कामिरिता शेरपा ने 32वीं बार किया सगरमाथा का सफल आरोहण। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पर्वतारोहण इतिहास में शेरपा समुदाय के योगदान को बताया असाधारण। और कांगो में फैले इबोला प्रकोप को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य संकट घोषित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।